लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों के लिए जयंती के अवसर पर समारोही ख्रिस्त्याग में पोप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। नौ फरवरी को करीब 25,000 सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पोप फ्रांसिस ने वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में समारोह ख्रिस्त्याग अर्पित किया। दुनिया भर से आए सुरक्षा कर्मियों के समक्ष पोप ने अपराध एवं हिंसा के विभिन्न रूपों के खिलाफ लड़ाई में, सृष्टि की सुरक्षा में और शांति को बढ़ावा देने में उनके मूल्यों को रेखांकित किया। अपने उपदेश में पोप फ्रांसिस ने कहा,
L'atteggiamento di Gesù presso il lago di Getsemani viene descritto dall'evangelista con tre verbi.
गेनेसरेत झील पर यीशु के रवैये का वर्णन सुसमाचार लेखक ने तीन क्रियाओं के माध्यम से किया है, देखे, सवार हुए और बैठ गए। यीशु को भीड़ के सामने दिखावा करने, नौकरी करने, अपने मिशन को पूरा करने में समय सारणी का पालन करने की चिंता नहीं है। इसके विपरीत वे हमेशा दूसरों से मिलना, उनसे संबंध बनाना तथा उनके संघर्षों और असफलताओं के प्रति सहानुभूति रखना अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। इसलिए यीशु उस दिन उन्हें देखा, नाव पर चढ़े और बैठ गए। सबसे पहले यीशु ने देखा, संत पापा ने कहा, उनकी नजरें इतनी सजग हैं कि वे बड़ी भीड़ के बीच भी किनारे पर आती दो नावों को देख लेते हैं और उन मछुआरों के चेहरे पर निराशा समझ जाते हैं जो रात भर की निष्फल मेहनत के बाद अब अपनी खाली जाल धो रहे थे। यीशु उन लोगों की भावनाओं को दया के मनोभाव से देखते हैं तथा उनकी निराशा और हताशा को महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, यीशु हम पर दया की दृष्टि से देखते हैं, हमें ईश्वर की करुणा नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर के तीन दृष्टिकोण हैं, निकटता, करुणा और कोमलता।
E non dimentichiamo questo, no? La compassione di Dio. Le tre atteggiamenti di Dio. Vicinanza.
हम यह ना भूलें, ईश्वर निकट हैं, ईश्वर कोमल हैं, ईश्वर सदैव दयालु हैं।
Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare.
सांस लेने में दिक्कत होने के कारण संत पापा के संदेश को आगे समारोह के अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा,
E avendo visto il loro sconforto, Gesù salì.
उनकी निराशा देखकर यीशु नाव पर चढ़ गए। उन्होंने सिमोन से कहा, वह किनारे से थोड़ी दूर चले और वे नाव पर चढ़ गए। इस तरह वे सिमोन के जीवन में प्रवेश करते हैं और उनकी निराशा एवं निरार्थकता को महसूस करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, यीशु सिर्फ खड़े होकर चीजों को गलत होते हुए नहीं देखते जैसा कि हम अक्सर करते हैं और कड़वी शिकायत करते हैं, बल्कि वे पहल करते हुए सिमोन के पास जाते हैं, उस कठिन क्षण में उनके साथ समय बिताते और उनके जीवन की नाव पर सवार होने का निर्णय लेते हैं जो उस रात असफलता से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। उसके बाद नाव पर सवार होकर यीशु बैठ गए। सुसमाचारों में यह एक गुरु की विशेषता है जो दूसरों को सिखाते हैं। सुसमाचार में कहा गया है कि यीशु बैठ गए और उन्होंने शिक्षा दी। उन मछुआरों की आंखों और दिलों में व्यर्थ परिश्रम की एक रात की निराशा को देखते हुए यीशु सुसमाचार की घोषणा करने, निराशा की अंधेरी रात में रोशनी लाने, जीवन के संघर्षों के बीच में ईश्वर की सुंदरता के बारे बताने और यह पुष्टि देने के लिए नाव पर चढ़ गए कि जब सब कुछ खो गया सा लगता है तब भी आशा बनी रहती है। तब चमत्कार घटित होता है जब यीशु हमारे जीवन की नाव में सवार होकर हमें ईश्वर के प्रेम का शुभ समाचार देते हैं कि वे निरंतर हमारे साथ रहते और हमें सहारा देते हैं। तब जीवन नए सिरे से शुरू होता है, आशा का पुनर्जन्म होता है और हम एक बार फिर समुद्र में अपने जाल डाल सकते हैं। संत पापा आगे कहते हैं, भाइयों एवं बहनों, आज जब हम सशस्त्र बलों, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जयंती मना रहे हैं तो आशा का यह संदेश हमारे साथ है। मैं आप सभी को आपकी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं उपस्थित सभी अधिकारियों, सैन्य संघों और शैक्षणिक संस्थाओं तथा सैनिकों की सेवा में समर्पित धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों का अभिवादन करता हूं। आप सभी को एक महान मिशन सौंपा गया है जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को शामिल करता है। हमारे राष्ट्रों की रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना, वैधता और न्याय बनाए रखना। आप कैद खानों में मौजूद हैं और अपराध तथा हिंसा के विभिन्न रूप जो समाज के जीवन को बाधित करने की कोशिश करते उनके खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं। मैं उन सभी लोगों की भी याद करता हूं जो प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्य, पर्यावरण की सुरक्षा, समुद्र में बचाव कार्य, कमजोर लोगों की सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। प्रभु आपसे भी वही करने को कहते हैं जो वे किए। देखो, चढ़ो और बैठो, देखना, क्योंकि आप अपनी आंखें हमेशा खुली रखने, आम भलाई के खतरों, अपने साथी नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने वाले और पर्यावरण, सामाजिक एवं राजनीतिक जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के लिए बुलाए गए हैं जिनसे हम अवगत हैं। सवार होना, क्योंकि आपकी वर्दी अनुशासन जिसने आपको आकार दिया, साहस जो आपकी पहचान है, शपथ जो आपने ली है, ये सब चीजें आपको न केवल बुराई को देखने के महत्व की याद दिलाती बल्कि तूफान से घिरी नाव पर सवार होने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने की याद दिलाती है कि वह फंस ना जाए, क्योंकि यह भी भलाई, स्वतंत्रता और न्याय की सेवा में आपके मिशन का हिस्सा है। और अंत में बैठना, क्योंकि हमारे शहरों और मोहल्लों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपकी उपस्थिति एवं असहाय लोगों की मदद करना हम सभी के लिए एक सबक हो सकता है। वे हमें सिखाते हैं कि अच्छाई हर चीज को जीत सकती है। वे हमें बतलाते हैं कि न्याय, निष्पक्षता और नागरिक जिम्मेदारी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। वे हमें सिखलाते हैं कि हम बुराई की विरोधी ताकतों के बावजूद एक ज्यादा मानवीय, न्यायपूर्ण और भाईचारे वाली दुनिया बना सकते हैं। सैनिकों की सेवा में समर्पित पुरोहितों की याद कर संत पापा ने कहा, आपके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिसमें आपका पूरा जीवन समर्पित है, आपके साथ आपके पुरोहित होते हैं। उनका काम, जैसा कि दुर्भाग्य से इतिहास में कई बार हुआ है, युद्ध से विकृत कृत्यों को आशीष देना नहीं है। जी नहीं, वे आपके बीच ख्रिस्त की उपस्थिति के रूप में हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी बात सुनना और सहानुभूति देना चाहते हैं, आपको हमेशा नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं और आपकी दैनिक सेवा में आपका समर्थन करना चाहते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक समर्थन के स्रोत के रूप में वे हर कदम पर आपका साथ देते हैं एवं सुसमाचार के प्रकाश में तथा आम भलाई की खोज में आपके मिशन को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम आपके द्वारा किए गए कार्यों के आभारी हैं, जिसके लिए कभी कभी आपने बहुत बड़ा व्यक्तिगत जोखिम उठाया। आपका धन्यवाद, क्योंकि तूफान से घिरी हमारी नाव पर सवार होकर आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी सेवा और अपनी सभी गतिविधियों के उद्देश्य को कभी ना भूलें, जो कि जीवन को बढ़ावा देना, जीवन को बचाना और जीवन का निरंतर रक्षक बनना है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया सतर्क रहें, युद्ध जैसी भावना पैदा होने के प्रलोभन के प्रति सावधान रहें, शक्ति के भ्रम और हथियारों की गर्जना के बहकावे में न आएं, इसके प्रति चौकस रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस प्रचार से विषक्त ना हो जाएं जो नफरत पैदा करता है, दुनिया को दो भागों में बांटता है, एक मित्र की रक्षा करने के लिए और दूसरा शत्रु से लड़ने के लिए। इसके बजाय हमारे पिता ईश्वर के प्रेम के साहसी गवाह बने, जो चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन बने, तो फिर आइए हम सब मिलकर शांति, न्याय और भाईचारे के नए युग के निर्माता बने। और ख्रिस्तिया के अंत में संत पापा ने जयंती मनाने के लिए उपस्थित सभी तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 10 से 11 फरवरी तक देशज लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता की ओर एक मार्ग विषय पर रोम में आयोजित IFAD में देशज लोगों के मंच की 7वीं वैश्विक बैठक के आयोजकों और प्रतिभागियों को संत पापा फ्रांसिस ने संदेश भेजा। आज सुबह FAO, IFAD, WFP के लिए परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मोनसिन्योर फर्नांडो चीका अरेलानो ने संत पापा के संदेश को पढ़ा। संत पापा ने संदेश में सभी प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त किया कि यह बैठक देशज समुदायों की प्राथमिकताओं, चिंताओं और न्यायसंगत आकांक्षाओं पर बहस, अध्ययन और चिंतन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। चुना गया विषय देशज लोगों के मूल्यों को पहचानने का आह्वान करता है, साथ ही ज्ञान और प्रथाओं की पैतृक विरासत को भी, जो महान मानव परिवार को सकारात्मक रूप से समृद्ध करती है तथा उसे उनकी परंपराओं की विविध विशेषताओं से रंग देती है। यह सब वर्तमान समय में आशा की एक किरण को उजागर करती है, जो तीव्र और जटिल चुनौतियों के साथ साथ कुछ तनावों से भी भरा हुआ है। अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के अधिकार की रक्षा में अनिवार्य रूप से समाज में अनेक योगदान के मूल्य को पहचानना तथा उनके अस्तित्व और जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना शामिल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े निवेशकों और राज्यों द्वारा भूमि हड़पने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह गंभीर रूप से खतरे में है। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं तथा समुदायों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार को खतरे में डालती हैं। जल, भूमि, भोजन मात्र वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन और प्रकृति के साथ इन लोगों के संबंध का आधार है। इसलिए इन अधिकारों की रक्षा करना न केवल न्याय का प्रश्न है, बल्कि सभी के लिए एक स्थायी भविष्य की गारंटी भी है। मानव परिवार से जुड़ाव की भावना से प्रेरित होकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भावी पीढ़ियां उस सुंदरता और अच्छाई के साथ सामंजस्य में एक ऐसे संसार का आनंद लें जिसने इसे बनाने में परमेश्वर के हाथों का मार्गदर्शन किया। अपने संदेश को समाप्त करते हुए संत पापा ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये प्रयास फलीभूत हों और राष्ट्रों के प्रभारी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जा सके कि मानव परिवार सामान्य भलाई की खोज में एक साथ चल सके, ताकि कोई भी वंचित या पीछे न रह जाए। और रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सशस्त्र बलों, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लिए जयंती मिसा समारोह के समापन पर शांति की स्थापना में योगदान देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सबसे पहले इस जयंती समारोह में उपस्थित सभी लोगों का गर्मजोशी से अभिवादन किया, जिसमें उनकी प्रेरितिक सेवा के लिए अन्य चैपलिन पुरोहित भी शामिल थे, और उन्होंने दुनिया भर में सैन्य सेवा में लगे लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजी। गाउडियम एट स्पेस को याद करते हुए संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, जो लोग अपने देश की सैन्य सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं, उन्हें खुद को लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के एजेंट के रूप में मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेवा केवल आत्मरक्षा के लिए ही की जानी चाहिए, कभी भी अन्य राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं। हमेशा संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन करना चाहिए और सबसे पहले जीवन और सृष्टि के प्रति पवित्र सम्मान के साथ। अंत में संत पापा ने सभी से पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल और पूरे मध्य पूर्व, म्यांमार, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सूडान में शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। उन्होंने प्रार्थना की कि हर जगह हथियार शांत हो जाए और शांति की मांग करने वाले लोगों की पुकार सुनी जाए। जयंती समारोह क्रिस्तियाग में अपने प्रवचन में संत पापा ने संत लूकस के सुसमाचार से लिए गए पाठ मछुओं के बुलावे को संदर्भित करते हुए सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों के मिशन पर प्रकाश डाला। इसी के मद्देनजर संत पापा ने 4 ट्वीट किया। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, जब प्रभु हमारे जीवन की नाव में सवार होकर हमें ईश्वर के प्रेम का शुभ समाचार देते हैं, तब जीवन नए सिरे से शुरू होता है, आशा का पुनर्जन्म होता है, फिर से उत्साह का संचार होता है और हम एक बार फिर समुद्र में अपने जाल डाल सकते हैं। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, जब हम सशस्त्र बलों, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जयंती मना रहे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी सेवा और अपनी सभी गतिविधियों के उद्देश्य को कभी न भूलें, जो जीवन को बढ़ावा देना, जीवन को बचाना और जीवन का निरंतर रक्षक बनना है। तीसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं आपसे युद्ध जैसी भावना विकसित करने के प्रलोभन के प्रति सतर्क रहने के लिए कहता हूँ। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उस प्रचार के विषाक्त न हो जाएं जो नफरत फैलाता है, दुनिया को दो भागों में बांट देता है, पहला मित्र की रक्षा करना और दूसरा शत्रु से लड़ाई। चौथे संदेश में संत पापा ने लिखा, हमारे पिता ईश्वर के प्रेम के साहसी गवाह बने, जो चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन बने। आइए हम सब मिलकर शांति, न्याय और भाईचारे के एक युग के शिल्पकार बने। उधर एक साक्षात्कार में इसराइली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित पट्टी से फिलिस्तीनियों की निकासी योजना को बहुत अच्छा बताया, जबकि रियाद से काहिरा तक फिलिस्तीनी लोगों को अपनी भूमि का अधिकार है, वे घुसपैठिए नहीं हैं। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को बहुत अच्छा, वर्षों में पहला नया विचार बताया। अरब देशों से निंदा की आवाज उठ रही है और पश्चिमी तट पर तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है। इस बीच जमीन पर इजरायली रक्षा बल पश्चिमी तट में अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौते के लागू होने के 2 दिन बाद 21 जनवरी से जारी है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।